शैव साधना के पीछे काम करने वाली राज शक्तियां। दसवीं शताब्दी के अंत तक दक्षिण में जैन धर्म बहुत प्रभावशाली था। पांड्य और चोल राजाओं ने जैन गुरुओं, मंदिरों और विहारों को दान दिया था। मैसूर के गांग भी जैन धर्म के अनुयायी थे। जैन पंडितों की विद्वत्ता और तपस्या ने उन दिनों के दक्षिण राजाओं को आकृष्ट किया था। लेकिन 8वीं शताब्दी के बाद भी जैन का प्रभाव घटने लगा। कहते हैं कि संवंदर नामक शैव साधु ने राज राजाओं की के राज से जैन धर्म को उखाड़ दिया और एक दूसरे साधु अपर ने पल्लव राजाओं के राज्य से भी जैन धर्म की महिमा कम कर दी। यह 8वीं शताब्दी की बात है। 10वीं शताब्दी के चोल राजा केवल कट्टर शैव ही नहीं हो गए, उन्होंने जैनों पर अत्याचार भी किया। यह विश्वास किया जाता है कि चोलों ने जैनों के दमन के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग भी किया। 8वीं शताब्दी के अंत से 10वीं शताब्दी के अंत तक दक्षिण के राष्ट्रकूट जैन धर्म के प्रेमी रहे और उनके प्रयत्न से जैन धर्म का बहुत अधिक प्रचार हुआ। मैसूर के गंग राजा तो जैन थे ही, राष्ट्रकूटों का अंतिम राजा चतुर्थ इंद्र सुप्रसिद्ध महाराजा कर्ण का पुत्र था और उसकी माता गंग वंश की राजकुमारी थी, इसलिए इंद्र बहुत ही धर्म प्रवण राजा हुआ। जब चालुक्यों ने राष्ट्रकूटों पर विजय प्राप्त की तो इंद्र ने संलेखन व्रत के द्वारा अपने जीवन का अंत कर दिया। इस प्रकार दक्षिणी महाराष्ट्र में 10वीं शताब्दी के अंत तक जैन धर्म फलता फूलता रहा, परंतु पश्चिमी चालुक्य कट्टर शैव थे और उन्होंने जैन प्रभाव को धोप पोछ देने का प्रयत्न किया। कलचुरियों ने चालुक्यों को परास्त किया और संभवतः इस झगड़े के मूल में जैन धर्म का दमन ही प्रधान कारण था, क्योंकि कलचुरी सरदार विज्जन कलचुरी स्वयं जैन था। अनुमान किया जा सकता है कि कलचुरियों ने इस क्षेत्र में जैन धर्म को फिर से प्रतिष्ठित करना चाहा होगा। यह सन 1159 ईस्वी की बात है, परंतु उनका राज्य स्थायी नहीं हुआ और शैव धर्म लिंगायत रूप में भी फिर से इस क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो गया। कर्नाटक में बहुत दिनों से गंग वंश का राज्य चल रहा था। सन 1004 में तंजोर के चोलों ने इनसे राज्य छीन लिया। कर्नाटक में बहुत दिनों से गंग वंश का राज्य चल रहा था। सन 1004 ईस्वी में तंजोर के चोलों ने इनसे राज्य छीन लिया। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि गंग जैन थे, किंतु चोल इस काल के कट्टर शैव हो गए थे। अगर चोलों की राज्य स्थायी हो गया होता तो संभवतः इस क्षेत्र से भी जैन धर्म के पैर उखड़ जाते। पर थोड़े दिन बाद ही गंगवाड़ी में होयसल राजाओं का राज्य हो गया और जैन धर्म के अनुयायी थे। इस वंश का विश्ववर्धन नामक राजा रामानुज के प्रभाव से वैष्णव धर्म का अनुयायी हो गया और तब से मैसूर में वैष्णव धर्म ने दृढ़ता पूर्वक पैर जमा लिया। इस प्रकार मैसूर में वैष्णव राजा के प्रतिष्ठित होने के कारण, तमिल देश में चोल राजाओं द्वारा दमन किए जाने के कारण और दक्षिणी महाराष्ट्र में लिंगायतों के द्वारा स्थान च्युत किए जाने के कारण दक्षिण भारत में जैन धर्म ने अंतिम सांस ली। यद्यपि कुछ छिटपुट अनुयायी उसके बाद भी रह गए, परंतु बाद में जैन धर्म वहां कभी सिर उठाने के काबिल नहीं रह गया। आंध्र प्रदेश में भी जैनों की परंपरा से ज्ञात होता है कि शैव धर्म ने ही वहां जैन धर्म को प्रभावहीन बनाया था। पूर्वी चालुक्य राजे परवर्ती काल में शैव कवियों के आश्रय दाता बने। इन्हीं कवियों में से सुप्रसिद्ध नन्नय कवि हैं, जिसने महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया और पौराणिक शैव धर्म की महत्ता स्थापित की। पूर्व के गंगवंशी राजा भी पूर्व के गंगवंशी राजे भी शैव थे और वारंगल के काकती वंशी राजे भी शैव ही थे। इन सब शक्तियों ने दक्षिण में जैन धर्म को प्रभावहीन बनाने के में योग दिया। ऐसा लगता है कि 10वीं शताब्दी का सबसे प्रभावशाली धर्म शैव मत ही था। दक्षिण से उसने जैन धर्म को एकदम उकाड़ फेंक दिया और उत्तर में बचे खुचे बौद्ध प्रभाव को आत्मसात कर लिया। उत्तर के नाथ पंथ में अनेक बौद्ध संप्रदाय अंतर्भूत हो गए, जिसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। इस बात का विश्वास करने से प्रचुर कारण है कि मुस्लिम आक्रमण के समय उत्तर भारत में ऐसे अनेक धार्मिक संप्रदाय थे जो ब्राह्मण धर्म से दूर पड़ते थे। उन दिनों बौद्ध और कापालिक तो वेद विरोधी थे ही, शैवों के अनेक मतों को भी वेद विरुद्ध मान जाता था। गोरखपंथियों में भी प्रसिद्ध है कि गोरखनाथ के पहले स्वयं गोरखनाथ के चलाए हुए 12 संप्रदाय थे और शिव जी के चलाए हुए 12 या 18 संप्रदाय। इनमें से कई को नष्ट करके गोरखनाथ ने 6 अपने और 6 शिव जी के संप्रदाय को लेकर 12 पंथी योग मार्ग का प्रवर्तन किया। इस परंपरा से यह स्पष्ट है कि गोरखनाथ के पहले उत्तर भारत में अनेक शैव मत प्रचलित थे। अपने नाथ संप्रदाय नामक ग्रंथ में मैंने दिखाया है कि इस जनश्रुति का क्या अर्थ हो सकता है। गोरखनाथ के पूर्व से ही बहुत से शैव बौद्ध और शाक्त संप्रदाय थे, जो वेद वाह्य होने के कारण वैदिक धर्म के अनुयायी नहीं माने जाते थे। जब मुसलमानी धर्म प्रथम बार इस देश में प्रविष्ट हुआ तो देश दो प्रतिद्वंदी धर्म साधना मूलक दलों में विभक्त हो गया, जो शैव मार्ग और शाक्य मार्ग वेदानुयायी थे। वे बृहत्तर ब्राह्मण प्रधान हिंदू समाज में मिलते गए और निरंतर अपने को वेदानुयायी सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहे। यह प्रयत्न आज भी जारी है। उत्तर भारत में ऐसे अनेक संप्रदाय हैं जो वेद वाह्य होकर भी वेद सम्मत योग साधना या पौराणिक देवी देवताओं की उपासना किया करते थे। ये अपने को शैव, शाक्य और योगी कहते थे। गोरखनाथ ने उनको 2 प्रधान दलों का पाया होगा। एक तो वे जो योग मार्ग के अनुयायी थे परंतु शैव या शाक्य नहीं थे, और दूसरे वे जो शिव या शक्ति के उपासक थे परंतु गोरक्ष सम्मत योग मार्ग के उतने नजदीक नहीं थे। इन्हीं दोनों दलों में से कुछ को गोरखनाथ ने अपने 12 पंथी मार्ग में चुन लिया होगा। वर्तमान नाथ पंथ के शाक्त मत भी हैं, लकुलिश पाशुपतों का मत भी है, वैष्णव योग मार्ग और वाम मार्गी और कापालिक मत भी है। इनका विस्तार पूर्वक विवेचन मैंने उपयुक्त पुस्तक के 13वें अध्याय में किया है। यहाँ प्रकृत इतना ही है कि दक्षिण भारत की भांति उत्तर भारत में भी शैव मत उन दिनों सबसे प्रबल धर्म मत था और इनमें भी नाथपंथी योगियों का प्रभाव सबसे अधिक था। परंतु शैव धर्म उत्तर भारत में उतना आक्रामक नहीं हुआ जितना दक्षिण में। इसका कारण यह है कि उत्तर भारत पर मुसलमानों के हमले निरंतर हो रहे थे और वहां की साधारण जनता और राजशक्तियों में इस संपूर्ण विपरीत धर्मी संस्कृति के प्रति शंका का भाव उत्पन्न हो गया था। इसलिए दक्षिण में जो धर्म मत अत्यंत आक्रमण रूप में प्रकट हुए, वे भी उत्तर भारत में एक साथ बिना किसी विरोध के फलने फूलने लगे। राजस्थान के अनेक राजवंश शैव धर्म के अनुयायी थे। मेवाड़ के बाप्पा रावल लकुलिश पाशुपत मत के अनुयायी थे। उनके नाम के साथ लगा हुआ रावल शब्द संप्रदाय वाचक लाकुल शब्द का ही अपभ्रंश रूप है। इस दरबार में जैनों और वैष्णवों का भी सम्मान होता रहा। इसी प्रकार सांभर के चौहान और मालवा के परमार भी शैव ही थे। गुजरात के मूल राज प्रसिद्ध शिव भक्त थे। फिर भी राजाओं के दरबार में जैन मुनियों का समादर होता रहा और कभी कभी गुजरात के किसी जैन ने जैन धर्म की दीक्षा भी ले ली। गुजरात के कुमारपाल के विषय में प्रसिद्ध है कि वे सुप्रसिद्ध हेमचंद्राचार्य के शिष्य थे। गुजरात में जैन धर्म की भी फलता फूलता रहा, किंतु धीरे धीरे वह केवल व्यवसायिक जाति में ही सीमित रह गया। 11वीं शताब्दी के आसपास राजस्थान के सभी बड़े दरबारों में जैन मुनियों की पहुंच थी, किंतु काशी कन्नौज का गाहड़वाल दरबार कट्टर वेदानुयायी था। वे अपने को माहेश्वर या शैव कहते हैं, किंतु वे विष्णु के भी उतने ही भक्त थे और अपनी सभी प्रशस्तियों में वे लक्ष्मी और नारायण की वंदना करते थे। इस प्रकार जिन प्रदेशों की भाषा हिंदी है, वहाँ 11वीं 12वीं शताब्दी में कट्टर वैदिक मतानुयायी राजाओं का राज्य था और संस्कृत के कवियों और पंडितों का ही सम्मान था। यद्यपि ये राजा अपने को माहेश्वर भी कह करते थे, पर थे वे वस्तुतः स्मार्ट। परंतु इनके सभी विश्वासों में जैनों द्वारा प्राचीन जीव दया और प्राणी हत्या से बचने का प्रयत्न प्रभावशाली था। वस्तुतः शैव और वैष्णव धर्मों ने यद्यपि दक्षिण के जैन धर्मों को उखाड़ दिया था, तथापि जैनों के इस सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार कर लिया था और परवर्ती काल का वैष्णव संप्रदाय प्राणी हत्या से उसी प्रकार बचने का प्रयत्न करता रहा जिस प्रकार जैन धर्म करता है।